لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ یترکوا ان یقولوا آمنا، زبان سے اپنے آپ کو مومن کہیں گے اور اللہ ان کے دعوے کو قبول کر کے ان کو چھوڑ دے گا؟ وہم لا یفتنون، کیا اللہ ان کا ٹیسٹ نہیں لے گا؟ ولقد فتنا الذین من قبل، تم کیا ہو؟ تم سے پہلے بھی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، جس نبی کے ماننے والے نے اپنے آپ کو مومن کہا، اللہ نے اس کا امتحان لیا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ پتا چلے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون. اور پھر اتنا ہی نہیں، قرآن نے یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ جو امتحان لیا جائے گا یہ کیسا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن جب اللہ ہمارا یہ امتحان لے رہا ہے اور ہمیں ٹیسٹ کر رہا تو ساتھ میں ہمیں ایک بہت بڑی نعمت، ایک اللہ کی بلیسنگ، ایک باؤنٹی، ایک خاص برکت اللہ کی جانب سے، یہ ایک گفٹ کہ بڑے سے بڑا امتحان کیوں نہ ہو، اللہ نے دعا کی شکل میں، دعا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، یہ اللہ کی جانب سے مومن کے لیے گفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا امتحان کیوں نہ ہو، دعا کو استعمال کرنا سیکھو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے بندے اطمینان رکھ، میں تجھ سے انتہائی قریب، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں فوراً اس کو جواب دیتا ہوں. مگر ہمارا موضوع دعا نہیں، ہمارا موضوع ہے دعا اور کرنٹ سچویشن. اور اس کے لیے ایک جملہ میں پھر کہہ دوں جو میں نے فرسٹ مجلس میں کہا ہے، اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس جملے کی ڈیٹیل میں جائیں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ دعا کے حوالے سے ہمارے ذہن میں، جیسے ہی ہم لفظ دعا سنتے ہیں، معصومین میں سے ہمارے ذہن میں چوتھے امام آتے ہیں. جیسے اگر آپ لفظ زیارت سنیں گے تو فوراً کربلا ذہن میں آئے گی، جبکہ ہر معصوم کی قبر کی زیارت زیارت ہے. جیسے آپ خطبے کا لفظ سنیں گے، خطبہ، تو نہج البلاغہ اور مولا آپ کے ذہن میں آئیں گے. لفظ دعا اور چوتھے امام. اور پھر میرا وہ جملہ کہ پورے بارہ امام میں چوتھے امام اور امام زمانہ کا یہ ٹائم پیریڈ، آخری زمانہ، یہ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے سیمیلر ہیں اور میچ کر رہے ہیں. چوتھے امام کا اور آج کا زمانہ ایک جیسا ہے، اور چوتھے امام نے اپنے زمانے میں دعا کو सईफा कामिला की शक्ल में गिफ्ट बनाकर हमें दिया। तो अब ये इस पर हमको बात शुरू करना है, मगर उससे पहले ये दो तीन छोटी छोटी बातें आज बहुत जल्दी जल्दी मुकम्मल कर ली जाए। दुआ एक्सेप्टेड नहीं, रिजेक्ट, फेंक दी जाती है मुंह पर। नंबर एक उस आदमी की कि जो एहसान को भुला देता, और लफ्ज एहसान बहुत बड़ा, उसमें वालिदैन तो आते ही हैं, उसके अंदर टीचर्स तो आते ही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो मैंने एक दो दिन कोशिश की थोड़ा सा समझाने की। दूसरा बहुत ही अहम मसला, अच्छा अब ये दूसरी बात इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, इतनी फेमस है कि इसको बताने का दिल भी नहीं जा रहा, लेकिन मसला यही है कि इतना फेमस होने के बावजूद सबसे ज्यादा जो लोग लापरवाही करते हैं और केयरलेस हैं, वो इसी के बारे में। भाई ये हदीस किसने नहीं सुनी कि हजरत मूसा के जमाने में एक मर्तबा बारिश नहीं हुई, और क्योंकि उस जमाने में हर कौम की इकोनॉमी डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर, और बारिश इज द ओनली सोर्स जिससे ये फसलें पैदा होती। लोग ये देख रहे हैं कि अब अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी इस साल की सारी फसलें जल जाएंगी, और वो कॉर्स या फसलें जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं जानते हैं, वो अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये सारा साल अब ये प्रॉब्लम रहेगा। ये बिजनेस नहीं है कि आज लॉस हुआ तो कल प्रॉफिट, ये फसलें हैं कि एक फसल गई तो छह महीने तक या कभी एक साल तक अब और कोई किसी किस्म से इनकम का चांस नहीं। तो घबरा के आए, आपको मालूम है कि एक स्पेशल नमाज है बारिश की, ओनली नमाज है इस्लाम में जो सुन्नत है, मुस्तहब है, और फिर भी इसके अंदर जमात अलाउड है। हां एक दो और सुन्नत नमाजों के बारे में है, जैसे नमाज ईद गदीर, लेकिन उसमें मराजे में इख्तिलाफ है। कुछ मर्जे परमिशन देते हैं कि गदीर के दिन की नमाज भी ऑल दो एक सुन्नत नमाज है, जमात से पढ़ सकते हैं, और बाद मराजे कहते हैं कि नहीं गदीर की नमाज भी जायज नहीं, बारिश की नमाज इज द ओनली नमाज के तमाम मुज्तहिदीन इस मसले पे मुत्तफिक। क्योंकि इतनी स्ट्रांग हदीस प्लस रसूलुल्लाह का अपना अमल, भाई आज आप हजरात मदीने मुनव्वरा में जब मस्जिद खमामा की जियारत को जाते हैं, बल्कि पिछले तीन चार साल से तो मैं ये देख रहा हूं कि इंग्लैंड से जाने वाले ज्यादातर ग्रुप उसी एरिया में स्टे करते हैं, जो मस्जिद खमामा है उसके करीब में जो नए होटल्स बने हैं। पिछले तीन चार साल से मैं देख रहा हूं कि लंदन के, इंग्लैंड के ज्यादातर ग्रुप का हिस्से भी वहीं पे होता। मस्जिद खमामा की हिस्ट्री यही, ये वो जगह है जो रसूलुल्लाह के जमाने में आउटसाइड मदीना थी, बारिश की नमाज शहर के बाहर पढ़ी जाती है, और यहां रसूल खुदा आके बारिश की नमाज पढ़ते थे, तभी इसका नाम है मस्जिद खमामा। अरबी में खमामा मीन्स क्लाउड्स, इधर पैगंबर दुआ मांगते हैं और उधर क्लाउड आ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए नमाज नहीं थी, कयामत तक उम्मत रसूल को परमिशन है कि नमाज जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। ये शायद मैं कुछ ज्यादा डिटेल में चला गया। खैर, तो बारिश की नमाज, और ये हर दौर में नमाज और रोजा, ये दो इबादतें ऐसी जो हर नबी की उम्मत पर वाजिब हुई। हजरत मूसा के पास आए कि या नबी खुदा हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बहुत देखिए मशहूर रिवायत, मैं असल रिवायत को तो मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। हजरत मूसा ने कहा चलो ठीक, बारिश की नमाज पढ़ते, उसका एक खास स्टाइल होता, हत्ता नमाज पढ़ने वाले इमाम के लिए भी ये ऑर्डर कि वो अपने ड्रेस को उल्टा पहने, यानी अबा जो है उसको उल्टा पहना जाएगा। जैसे एक हदीस है, मन बका अल हुसैन और अबका और तबाका वजबत उल जन्ना, जो हुसैन पे रोए, दूसरों को रुलाए, रोने वाली जैसी शक्ल बनाए। रोना नहीं आ रहा है मगर कम से कम तुम्हारा फेस और शक्ल ऐसी हो जैसे रोने वाले की, वजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब। तो कभी ये हालत है कि अगर आदमी एक अमल नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट अपने एक्सप्रेशन ऐसे दे, क्या कहेंगे अंग्रेजी में, बॉडी लैंग्वेज, लिबास उल्टा पहनो अबा, ताकि ये लगे कि इस वक्त सारी कौम परेशान। देखिए परेशानी के आलम में जो है ना, वो आदमी अपने लिबास की भी परवाह नहीं करता, क्रीज है कि नहीं, स्त्री है कि नहीं, क्या पहना है क्या नहीं पहना, पैर में जूता है कि नंगे पैर घर से निकले, घर में आग लग जाए आपकी क्या हालत होती। बीवी से कहते हैं कि कोट निकालो और पैंट निकालो और स्त्री करो और उसके बाद में घर से बाहर निकलूंगा। बारिश की नमाज में यही हालत। खैर ये एक दो बातें तो जरा मैं ज्यादा ही डिटेल में चला जाता हूं। सारी कौम बाहर आई, बारिश की नमाज ऐसी कि अल्लाह की रहमत जोश में आए, ऐसा मंजर बनाओ। बच्चों को माओ से अलग करो, बच्चे रोएंगे, बच्चों के रोने की आवाज सुन के रहमत खुदा जोश में आती। जानवरों के बच्चों को भी उनकी माओ से अलग करो, एक ऐसा एटमोसफियर बनाओ, क्योंकि आजकल अज़ादारी के खिलाफ जो बात हो रही है उसके अंदर ये बातें भी आ रही कि इस तरह से रोने की और आंसू बहाने की और ये शो करने की क्या जरूरत है कि बहुत गम दिल में है तो काफी। नमाज इस्तिस्का की डिटेल कभी पढ़ लीजिए कि बारिश की नमाज में, बल्कि अगर मैं एक लफ्ज कह दूं तो शायद गलत ना हो, आर्टिफिशियल एटमोसफियर क्रिएट किया जा रहा, यही रहमत खुदा को बुलाने वाला। हम तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो हम तो रियल गम जाहिर करते हैं, उस पर भी लोगों को इतराज हो जाता नमाज इस्तिस्का। खैर तो बात यह हो रही है कि हजरत मूसा पहुंचे, बहुत मशहूर रिवायत है, अभी आप देखेंगे कि मैंने तकरीबन 10 मिनट ले लिए मगर असल वाकये में सिर्फ 2 मिनट लिए, इसलिए कह रहा हूं, बहुत कैलकुलेशन मुझे करना पड़ती है इस मेंबर पे आके, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप ये ना कहें कि इतनी फेमस हदीस को आपने 10 मिनट लगा दिए, फेमस हदीस को अभी तक सिर्फ 2 मिनट दिए हैं मैंने। अच्छा तो खुलासा यह है कि हजरत मूसा ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद हाथ उठाए, अभी दुआ स्टार्ट करना है, दुआ स्टार्ट नहीं हो, दुआ नमाज हो गई, नमाज का पर्पज यही है ताकि इसके बाद दुआ आसानी से कबूल हो। अभी पहला लफ्ज जबान पे नहीं आया है अल्लाहुम्मा, जिब्राइल आ गए, ऐ मूसा खुदा ने कहा है कि दुआ नहीं करना, क्योंकि इस कौम की दुआ अल्लाह को कबूल ही नहीं करना। तो अब अल्लाह ये नहीं चाहता कि नबी खुदा दुआ करे और अल्लाह नबी की दुआ को रोक दे, नहीं, तुम दुआ करना ही नहीं। हजरत मूसा को अल्लाह की जानिब से ऑर्डर आ गया, मूसा ने हाथ गिरा दी और कौम से कहा कि दुआ नहीं होगी। या नबी खुदा दुआ क्यों नहीं होगी, हम तो आए दुआ के लिए। कहा कि अल्लाह ने कहा है कि दुआ कबूल ही नहीं होना, मगर वाय रीजन क्या है। कहा रीजन यह है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी है जो गीबतें करता है, फितना फैलाता है, फितना अल फितना तो अशद्द मिन अल कत्ल। ये कोई हदीस भी नहीं है, अगर ये हदीस भी है तो बड़ी अहमियत, कुरान की आयत है। अब्दुल्ला इब्ने जहश ने जब कहा जजमेंट में गलती की और कुरैश वालों ने एतराज किया अल्लाह के रसूल पर कि आपके आदमी ने देखे कितनी बड़ी गलती कर दी, तो ये आयत नाजिल हुई। बैकग्राउंड आपको याद आ गया होगा, अब्दुल्ला इब्ने जहश। अब्दुल्ला इब्ने जहश कौन है, जो मैदान ओहद में अपने मामू हजरत हमजा के पैरों के पास दफन है। खैर तो अगर मैं तफसील बताऊं तो लोग कहते हैं कि जी आप टॉपिक से हट गए, तफसील ना बताओ तो ये अहम अहम बातें लोग भूल जाते हैं। अल फितना तो अशद्दु मिन अल कत्ल, एक ऐसा इंसान जो गइबत करता, गइबत करने वाले को भी नहीं मालूम कि उसकी गइबत का रिजल्ट क्या निकल रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता। कभी हम एक जलती हुई सिगरेट कहीं फेंक के चले जाते हैं और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। हमारे हिसाब से तो हमने छोटी सी गलती की, अगर ये मिस्टेक है बहुत छोटी सी, तो बाद ऐसी मिस्टेक है कि देखने में छोटी लगती है, आगे उसके रिजल्ट, क्योंकि ये हदीस है। इमाम फरमाते हैं कि गइबत, तुम्हें क्या पता कि इसका नतीजा क्या निकलता, इसके नतीजे में घर टूटते हैं, ये इमाम की हदीस। इसके नतीजे में शौहर और बीवी में जुदाई होती है। इसके नतीजे में भाई भाई का दुश्मन बन जाता। इसके नतीजे में साहिबान ईमान कत्ल हो जाते हैं। हुक्मरान तक बात पहुंच गई, जालिम तक बात पहुंच गई। हमने तो कहने के लिए क्या खाली खिमत ही तो की, दस्तरखान पे बैठे हुए खाना खा रहे और किसी के बारे में एक बात कह दी, लेकिन इसका रिजल्ट कहां तक जाएगा? इमाम कहते हैं ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस उस आदमी को बर्दाश्त करना पड़ेंगे जिसने गीबत की है, चाहे उसकी नियत हो या ना हो। यानी ये नियत के ये घर टूट जाए, ये नियत ना हो। फितना फितना, हर आदमी कहता है फितना बहुत बड़ी बहुत खराबी, और फितना फैलाता भी चला जा रहा है। अब इस पे तो बाद में बात होगी, बहुत अहम। आखिरी जमाने का नाम ही फितने का जमाना। लेकिन अभी ये हदीस तो मुकम्मल हो जाए। हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह ने ये फरमाया है कि गइबत करने वाला एक एक पूरे मजमे में, लेकिन जिस जगह गइबत करने वाला हो उस पूरे मजमे की दुआ को अल्लाह रोक देता है, कबूल नहीं करता। एहसान फरामोश तो खुद दुआ करेगा, उसकी दुआ रुक जाएगी, बाकी लोगों की दुआ तो नहीं रुकेगी। गइबत करने वाला अगर किसी मजमे में है तो खाली उसकी दुआ नहीं रुकेगी, उस सारे मजमे की दुआ रुक जाएगी। मासूम से इसका रीजन भी पूछा गया, मासूम ने उसका रीजन बताया। गइबत एक ऐसा गुनाह है, हो ही नहीं सकता जब तक के सामने कोई सुनने वाला ना हो। ये सब लोग जो पार्टिसिपेंट होते हैं, इनका बराबर से रोल है गइबत के गुनाह में। आदमी दीवार से गइबत नहीं करता, आदमी गइबत करता इंसानों से। अगर ये सब अपने कान बंद कर ले, हमें गइबत सुनना ही नहीं है, गइबत करने वाला गइबत कर ही नहीं सकता। तो खैर, इमाम फरमाते हैं सारा मजमा। अब जो कौम ने यह सुना गुस्से में आ गए। बहुत मशहूर हदीस है, मैं क्या आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं? या नबी खुदा, जरा बताइए वो कौन आदमी है जिसकी वजह से हमारी दुआ रुक गई? देखिए, आम हालात में तो सभी उसकी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, बल्कि लोग ये चाहते हैं वो जरा कुछ ज्यादा कहे। उसने कहा कि पता है फुला आदमी ने क्या कहा? देखो, अच्छा ये कहा उसने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं यकीन नहीं आ रहा। ये इसलिए कहा कि दो और बातें वो इसके बारे में कह दे। अब कौम जब मुसीबत में आ गई, अब हर एक को गुस्सा, वो कौन आदमी? अच्छा, वो जो आदमी है असल में, उसको तो पता है ना कि मैं हूं। वो घबरा गया कि आज अगर कौम को मेरे बारे में पता चल गया तो ये अच्छी तरह से मेरी पिटाई भी करेंगे, मारेंगे भी, कंडेम भी करेंगे, दरमियान से निकाल भी देंगे। आज तो बड़ी जिल्लत होगी। दिल ही दिल में कहा, खुदा बंदा मेरे आज के गुनाह को माफ कर दे, अब तक के गइबत के गुनाह को आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। हजरत मूसा ने कौम से कहा कि हमें गइबत करने वाला, उसकी वजह से दुआ रुक रही। उसने तौबा की दिल में, दिल ही दिल में, क्योंकि आज वो डर रहा है ना कि सारी कौम उसके अगेंस्ट है। हजरत मूसा फिर अल्लाह की तरफ, खुदा बंदा ये कौम कह रही है कि इसका नाम क्या? कहा कि आए मूसा, कौम से कहो कि आप जल्दी से अपने अपने घरों में चले जाए, बहुत तेजी से बारिश आ रही है, अब टाइम नहीं है यहां पे खड़े रहने का। हजरत मूसा कहते हैं, खुदा बंदा ये बारिश तो तूने तो मना कर दिया था कि दुआ कबूल नहीं होगी। कहा लेकिन उसने इतनी सच्ची तौबा की कि उसकी तौबा की बरकत से बगैर दुआ के दुआ कबूल हो रही, दुआ नहीं मांगी मगर अल्लाह दुआ कबूल कर रहा। रोजेदार के लिए भी यही हदीस, हर साल आप पढ़ते हैं ना माह मुबारक के रमजान में, किताबों में ये वाकया। और अगर आप नहीं पढ़ते तो उलमा आपको याद दिलाते हैं ना रोजेदार की दुआ की ताकत। कैस का वाकया, कैस का, मैं इसीलिए इशारा कर रहा हूं कि आपको याद आ जाए कैस का वाकया। पहले जमाने में जब इस्लाम में रोजा आया था, पहले साल, तो क्या ये तरीका था जो आज का तरीका? पहले साल जो रोजा आया था उस वक्त हुक्म ये था कि रोजा रखो, इफ्तार के वक्त खाना खाओ, लेकिन पूरी रात खाने पीने की इजाजत नहीं है। जैसे ही तुम्हें पहली नींद आएगी उसके बाद अब रात के वक्त भी रोजा रखना और दिन के वक्त पहली नींद। अब फर्ज कीजिए कि अगर 7:30 पे रोजा ब्रेक होता इफ्तार, एक आदमी ने खाना खाया 9:30 वो उसको नींद आ गई, अब 9:30 से लेके अगले दिन पूरी रात पूरा दिन अगले दिन सनसेट के वक्त वो रोजा खोले। दूसरा आदमी है उसने इफ्तार किया 11 बजे उसको नींद आई, वो 11 बजे तक खा पी सकता है, पहली नींद आ गई चाहे आधे घंटे बाद जाग जाए, उसको रोजे के आलम में रहना पड़ेगा। ये आज कोई नया प्रॉब्लम लेके लोग नहीं आते कि मौलाना ये 18 घंटे के रोजे तो हमसे नहीं रखे जा रहे, ये 20 घंटे का रोजा तो हमें जुल्म लग रहा है, ये 22 घंटे का रोजा तो हमारी ताकत से बाहर। अच्छा ये सारी बातें जो कहते हैं लेकिन हर बात के आखिर में लोग मुझे कहते हैं कि मौलाना तो ऐसा लग रहा है कि आपका एक ही मौजू रह गया, लेकिन मैं क्या करूं, कौम जो बात भी करती है आखिर में एक जुमला जरूर बढ़ा देती है, 22 घंटे का रोजा। नॉर्वे और स्वीडन के कुछ इलाके हो सकता है कि इंग्लैंड यूके का भी कोई बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ 18 घंटे का रोजा 22 घंटे का रोजा, 9 साल की बच्ची वो बालिग है उसके ऊपर वाजिब हो गया, और फिर आखिर में एक जुमला जरूर कहेंगे अरे वो नजफ और कुम में बैठने वाले कमरे के बूढ़े आदमी उसको क्या पता कि यूरोप का क्या हाल है और नॉर्थ अमेरिका का क्या हाल है, वो वहां बैठ के यहां के बारे में फतवा कैसे दे सकते, ये जरूर कहेंगे आखिर में। किसी भी मौजू पे डिस्कशन हो रहा हो आखिर में बात जरूर पहुंचे कि आगे मर्जियत की तौहीन पर, लेकिन यह अलग बात है कि जहां 18 घंटे का या 20 घंटे का या 22 घंटे का रोजा हो उसके कुछ फिक्री मसले हैं वही आलिम बताएंगे जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे मुसलसल ये कंप्लेन की जा रही है कि मौलाना आप टॉपिक शुरू करते हैं फिर इधर उधर चले जाते हैं टाइम खत्म हो जाता, तो मैं अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम का सलूशन है 18 घंटे का रोजा खाली यूरोप में नहीं है, ईरान के कुछ इलाकों में भी 18 घंटे का रोजा 1400 साल से चला आ रहा है। खैर मैं इधर नहीं जाता, लेकिन इस्लाम के शुरू में जो रोजे थे वो 18 घंटे के भी थे और 20 घंटे के भी थे और 22 घंटे के भी, डिपेंड करता है कि आपको कितने रोजा इफ्तार के कितनी देर के बाद नींद आ गई। चुनाचे कैस का वाकया बहुत मशहूर वाकया है, हर साल मैं तो रमजान की पहली तारीख को जरूर पढ़ता हूं, इसलिए मैं यहां पे डिटेल में नहीं जा रहा कि वाकया यही कि अल्लाह के रसूल मदीने के अंदर इफ्तार से एक घंटा पहले एक बाग से गुजर रहे हैं, बाग या खेत, और देखा कि बहुत सारे मुसलमान जमा और उनके बीच में पैगंबर का एक सहाबी कैस बेहोश पड़ा, बेहोश। पैगंबर करीब आए कि भाई क्या बात है, पानी वानी छिड़का गया, पूछा गया कि क्या बात है, कहा कि या रसूल अल्लाह आज का रोजा इतना टफ था, भूख और प्यास की वजह से बुरी हालत, और ये वो जमाना है, रोजा कब वाजिब हुआ, 2 हिजरी में। 2 हिजरी कौन सा जमाना है कि मुसलमानों के पास खाने के लिए खजूर तक नहीं, या रसूल अल्लाह दिन भर में मेहनत करता हूं, शाम को थोड़ा इफ्तार का सामान आता है तो सारा दिन रोजे के आलम में मैंने जो काम किया बहुत ही हार्ड वर्क लेबर का काम, कमजोरी हुई, गश खा के बेहोश होकर गिर पड़ा। पैगंबर से पहले जो दूसरे साहबी थे उन्होंने हैरान होकर उसको देखा और कहा क्या है कैस, ये 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे का रोजा इसने तुमको इतना थका दिया, कहा कि 12 घंटे का रोजा, कहा मेरा रोजा तो 36 आवर्स का है। अरे ये कौन सा रोजा, पता चला कल हुआ ये था कि कल भी इसने सारा दिन मेहनत करके फाका किया था, रोजा रखा, शाम के वक्त इफ्तार का वक्त आया, ये जाके किचन में बैठा, बीवी जो थी वो इफ्तारी बना रही थी, बहुत एहतियात से मुझे बात करना है कोई ऐसा लफ्ज ना आए कि औरतों की फीलिंग हर्ट्स हो जाए, खैर तो खुलासा यह है कि बीवी इफ्तार बना रही थी किसी वजह से स्लो हुई, ये सारा दिन मेहनत करके आ जाए, फर्स्ट डे किचन में बैठा एक बार इसकी आंख लग गई, अब आंख लग गई अजान के बाद जब रोजा खुलता है अगर आंख लग जाए उसके बाद अब फिर रोजा वाजिब हो गया, अब सारी रात इसने रोजा रखा है खजूर तक नहीं खा सका, और इसके बाद फिर सारा दिन, तो अब दूसरे दिन के एंड में इतनी कमजोरी हो गई और दोनों दिन मेहनत भी इसको करना, घर का खर्चा सुबह से शाम मेहनत करो तो थोड़ी सी घर में रोटी आती, इस कमजोरी की वजह से यह हालत हो गई, आप कह रहे हैं 18 घंटे का रोजा कौन रखे, आप कह रहे हैं 20 घंटे का रोजा कौन रखे। ये सारी चीजें इस्लाम में आ चुकी हैं और हर एक के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी हैं। नहीं रख सकते 22 घंटे का रोजा, उसका रास्ता है, बजाय इसके कि सॉल्यूशन दरियाफ्त करें सीधा सीधा उठा के क्रिटिसाइज। लेकिन बात बहुत ज्यादा फैल रही है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, सुनो, अभी अभी सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई, कुलु वशरबु हत्ता यतबयना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद। यह अभी अभी आयत नाजिल हुई कैस की वजह से। क्यों कैस की क्या वजह? कि इतना टफ रोजा हुआ और वो बेहोश होके गिरा और होश में आया तो दिल में उसके ख्याल आया था कि काश अल्लाह ये हुक्म न लगाता कि जैसे ही पहली नींद आए दोबारा नया रोजा शुरू हो गया। कोई दुआ नहीं मांगी उसने, सिर्फ एक ख्याल आया कि काश शरीयत का मसला ऐसा होता। लेकिन रोजेदार के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने फौरन उसे कबूल करके शरीयत बदल डाली, शरीयत बदल दी गई, आयत आई, खाओ पियो पूरी रात पूरा दिन पूरी रात जब तक के फजर का वक्त ना आ जाए। अब कोई मसला नहीं कि पहली नींद है कि पांचवीं नींद है कि दसवीं नींद है कि नींद है कि नींद नहीं। रोजेदार की दुआ में इतनी ताकत। रिवायत है कि दुआ तो दूर की बात है, अभी दुआ नहीं की है, सिर्फ दिल में ख्याल आया कि काश ऐसा हो जाता। और वो अपना कोई पर्सनल मैटर नहीं, अल्लाह की शरीयत। अल्लाह ने कहा तेरी खातिर मैं अपनी शरीयत बदल दूंगा क्योंकि रोजेदार। यही वजह कि कोई बहुत अहम अगर आपको दुआ मांगना हो तो पहले रोजा रखा करें, रोजे के बाद की दुआ बहुत जल्द कबूल। खैर ये तो बीच में एक दुआ ही के हवाले से एक बात आई है, लेकिन असल बात कहां जाओ, उसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अब दुआ की जरूरत नहीं है, बगैर दुआ के मेरी रहमत नाजिल होने वाली है और बारिश होने वाली। कौम ने कहा लेकिन या नबी खुदा उसका नाम तो पता चले ताकि आइंदा हम जरा सा उसको अवॉइड करें। मूसा ने पूछा, खुदा ने कहा है मूसा मैंने सब लोगों की दुआ क्यों रोकी थी? क्योंकि एक गइबत करने वाला था, यानी दूसरे की बुराई बयान करने वाला, तो जिस गुनाह की वजह से मैंने दूसरों की दुआ रोकी है क्या उसका नाम बताकर वही गुनाह मैं करूं? वो तौबा भी कर चुका है फिर भी मैं उसका जिक्र करके वही गुनाह मैं भी करूं? तो गइबत तो वो गुनाह है कि अल्लाह भी उसको अवॉइड करना चाह रहा, गइबत करने वाले की दुआ। अब आइए बिल्कुल इसके रिवर्स एक हदीस, हदीस नहीं एक वाकया। और ये वाकया और एक दूसरा वाकया आयतुल्लाह सिस्तानी का, ये मर्जे नहीं, एक और बहुत बड़े आलिम। देखिए कुछ ऐसे नाम हैं कि वो किसी का नाम नहीं है, जहां जिस शहर के रहने वाले लोग होते हैं। अब सिस्तान में अगर 50,000 हैं तो सारे के सारे आगे सिस्तानी। शिराज में अगर 80,000 की पॉपुलेशन है तो 80,000 आगे शिराजी। इस्फहान में अगर 100,000 है तो वहां सब आगे इस्फहानी। कुछ बड़े मराजे भी गुजरे आगा इस्फहानी, कुछ बड़े फासिख भी गुजरे आगा इस्फहानी, कुछ बड़े मराजे भी गुजरे आगा शिराजी, कुछ बड़े फासिख भी गुजरे आगा शिराजी। लेकिन ये इसलिए कहना पड़ा कि आगा सिस्तानी का वाकया, ये आगा सिस्तानी हमारे मर्जे नहीं। हाँ कुछ लोग कहते हैं उनके वालिद का वाकया, बहुत मिंबर पे बयान होता है, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन जब वो वाकया मैंने सुना, फिर ये वाला वाकया सुना जो मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये मेंबर पे कम बयान होता, और फिर जनाबे शतीता बीबी का वाकया मैंने पढ़ा और सुना, तो एक बार मेरे दिल में ख्याल आया कि इस टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी किताब लिख डालू। 150 स्टोरीज मुझे ऑथेंटिक उलमा की मिल गई। बस ये है कि अब इतना टाइम नहीं मिला कि इन्हें कंपाइल करके बुक की शक्ल में तैयार किया जाए। और ये क्या चीजें थी? ये वो स्टोरीज थी जिसमें जमाने के इमाम किसी मोमिन की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए थे, और इस तरह आए थे कि जो मारिफत रखते हैं उन्होंने पहचान लिया कि ये इमाम आए। ये कौन मोमिन है, क्या इसने ऐसी नेकी की, इतना इसका हाई स्टेटस कि खैबत में रहने वाला जमाने का इमाम इसकी नमाज जनाजा पढ़ने आए। और नमाज जनाजा में लास्ट दुआ तो आपको पता, اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه. چاہے انہی الفاظ میں دعا مانگی جائے یا کوئی اور الفاظ میں، نماز جنازہ کے اندر لاسٹ جو دعا ہے، شہادتین کے بعد، درود کے بعد، عام مومنین اور مومنات کی دعا کے بعد آخری دعا خاص اس میت کی ہوتی ہے، اے خدا اگر یہ نیکی کرنے والا تو اس کے اجر میں اضافہ فرما، گناہگار تو میں دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم اور آپ یہ جملہ کہیں اور کسی کے جنازے پہ امام زمانہ یہ جملہ کہیں، کتنا فرق ہوگا. تو اب پہلا واقعہ اس میں جناب شتیتہ کا آتا، صرف اتنا فرق ہے کہ شتیتہ بی بی کے جنازے پر ساتویں امام آئے تھے، کیونکہ وہ ساتویں امام کے زمانے کی مومنہ تھی. لیکن بات وہاں سے شروع، وہ پہلا اتھینٹک اور فیمس واقعہ ہمارے پاس ہے کہ کسی مرنے والے کے جنازے میں شرکت کے لیے سینکڑوں میل دور سے امام آئے. گھر کے سلمان فارسی کے جنازے پہ بھی مولا نے جا کے شرکت کی تھی، لیکن وہ سلمان سلمان ہے، سلمان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ہم جیسے عام لوگوں کی. تو سوال پوچھا تھا نا راوی نے، اور یہ راوی وہ تھا جو دو مہینے پہلے مدینے میں امام کی زیارت کر چکا تھا، ڈیڑھ مہینے پہلے مکے میں امام کے ساتھ حج کر چکا تھا، تو اچھی طرح پہچانتا تھا امام کو. مولا اس شتیتہ کے جنازے پہ کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنا خمس بہت ہی ریگولر دیتی تھی. ریزن نمبر ون، ریگولر خمس دینے والا. اور یہ غیبت کا واقعہ بھی نہیں ہے کہ پھر یہ اعتراض کیا جائے، پتہ نہیں وہ امام تھے کہ نہیں تھے، کس نے پہچانا، ہم کیسے یقین کریں. یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ امام ظاہر ہیں اور وہ راوی گواہی دے رہا جو امام کے ساتھ پورا حج کر کے آیا. کہا خمس خمس خمس. اچھا شیطان کبھی یہ برداشت کرے گا کہ ایک آدمی کو ساری زندگی اس نے بہکا دیا اور آخر میں اس کے جنازے پر امام آ کر اس کے لیے دعا کر دے؟ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ امام آئے. تو وہ گناہ بھی ہم سے کروا لے گا جس کے نتیجے میں امام جنازے پر آ سکتے ہیں اور نہیں آتے. یہ لفظ واضح کروں، اللہ کے رسول خبر آئی، بات سے بات نکل رہی ہے، یہ میرا اسٹائل. خبر آئی کہ اللہ کے رسول مدینے میں آج ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کتاب شرح لما میں الدین والقرض کے فقہی مسائل میں یہ روایت لکھی. میں نے اس لیے کہا کہ روایت جو ہے نا، جو لکھنے والا ہے اس کے اسٹیٹس سے فرق پڑتا ہے. یہ مرجع وقت کی کتاب میں، شہید ثانی جیسا عظیم مرجع آج ہر مرجع ان کی تقلید میں، تقلید نہیں ان کی شاگردی میں، شرح لما ایسی عظیم فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر مسائل ہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہمارے حوضے میں بعض اوقات لوگ اس کتاب کی قسم کھا کے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہیں. یہ روایت لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے. یہ غیبت کا زمانہ نہیں، یہ ہے اللہ کے رسول جب جنازے کے لیے پہنچے تو مجمع تھا مرنے والے کی، نماز جنازہ میں لوگ آ ہی جاتے ہیں، اور اس وقت تو مدینہ تھا بھی بہت چھوٹا اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی زیادہ تھا. پیغمبر نے سنا گزرتے ہوئے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ مرنے والا، اس کی گردن پہ قرضہ بہت تھا، اس نے لوگوں کا قرضہ لیا اور واپس نہیں کیا. پیغمبر نے سنا، وہیں رکے، واپس مڑے. مرنے والے کے وارث گھبرا کے آ گیا، یا رسول اللہ صفیں تیار ہو گئی ہیں، آئیے نماز پڑھائی. کہا کہ میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اب بعض اوقات لوگوں کو ایسے واقعات پہ اعتراض ہوتا، یہ اعتراض کا موقع نہیں ہے، یہ پیغمبر کی ذمہ داریاں ہیں کہ جو غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اس کو بتائیں. چنانچہ پیغمبر واپس ہوئے، وارثوں نے کہا یا رسول اللہ جماعت تیار ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھائیے. پیغمبر نے فرمایا جو آدمی اپنی گردن پہ قرضہ لے کر گیا ہے ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. مولا کائنات آگے بڑھ، یا رسول اللہ اور اگر کوئی آدمی یہ گارنٹی لے کے اس کا قرضہ دے دے گا؟ کہا کہ یقیناً پھر ہم نماز پڑھائیں گے. کہا میں گارنٹی لیتا ہوں اس کا سارا قرضہ میں ادا کروں گا. پیغمبر نے نماز پڑھائی. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے مجمع میں بہت سارے مجتہدین بھی بیٹھا کرتے ہیں، اور وہ جو اس کے بعد سوالات کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، سوال اچھی چیز ہے مگر میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، ایک طرف مجھے روکا بھی جاتا ہے کہ جی اس سے اتنے منٹ سے اتنے منٹ نہیں ہونے چاہیے، دوسری جانب یہ واقعہ جو لوگ کہتے ہیں پھر آپ پڑھیے ہی نہیں واقعہ، تو یہ جو ہماری قوم کی حالت ہے کہ آدمی صاحب حیثیت ہے اور لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا، اس کو کیسے بتایا جائے کہ رسول اللہ جنازے پر آ کر واپس گئے، مولا نے جب گارنٹی لی تب نماز جنازہ پڑھا، اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اسلام کا، نماز جنازہ تو ہر ایک کی واجب، لیکن بس یہیں پہ بات روکتا ہوں، جب اس قسم کا گناہ، تو اب نماز جنازہ نہیں پڑھائی رسول نے، اس کا ریزن بھی آپ نے سنا، اور جن کے لیے اتنا شوق ہے امام کو کہ سینکڑوں میل دور ہیں وہاں سے امام معجزے سے آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان میں نمبر ایک ہے جو اپنا خمس باقاعدگی سے دیتا ہو، اور شیطان کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میری نماز جنازہ یا آپ کی نماز جنازہ یا ہمارے گھر کی عورتوں کی نماز جنازہ میں امام آئے، وہ امام کو روکنا چاہتا، اب شیطان تو امام کو نہیں روک سکتا، شیطان ہم سے وہ غلطی کرا لے گا کہ ہمارے جنازے پہ امام نہیں آئے، کہ جیسے میں نے مثال دی کہ رسول تو آ کر واپس گئے، تو اب یہ پہلا واقعہ، اور یہ واقعہ اس لیے بہت اہم ہے ساتویں امام کا کہ اس وقت امامت سامنے تھی، لوگ پہچان بھی رہے تھے، پتا بھی چل گیا یہ امام آئیں، غیبت میں اب بہت سارے واقعات، شاید 150 واقعات میں نے جمع کیے ایک کتاب کی شکل میں، ان میں سے ایک واقعہ، ایک آغا سیستانی والا واقعہ ہے، وہ اتنا پڑھا گیا کہ اب میں اس کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں، ایک آغا اسفہانی کا واقعہ، یہ مرجے نہیں، یہ مجتہد نہیں، لیکن بہرحال حجت الاسلام لیول کے مجتہد کے قریب قریب عالم، آج سے 300 سال پہلے کے آغا اسفہانی، اور جیسا کہ میں نے اشارتاً کہہ دیا کہ اسلام کے تو بہت علماء گزرے، مجتہدین بھی گزرے، اور مرجے کا ذکر تو ابھی آ گیا، ابو الحسن اصفہانی کل ہی ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم، انتقال ہو گیا، اور یعنی پوری عمر 73-74 کی ایج، اور جب ان کی نماز جنازہ شروع ہوئی تو ان کے ایک دوست نے جو خود بھی انہی کے لیول کا عالم تھا، دیکھا کہ امام زمانہ نماز جنازہ میں آ گئے، اور ان عالم کی نماز جنازہ سب لوگوں کے ساتھ امام زمانہ نے بھی پڑھی، اب جب امام نظر آ گئے سبوں میں، تو جو دوست ہے اس سے تو اپنی نماز نہ پڑھی جائے، دل چاہ رہا ہے نماز توڑو جا کے جلدی سے امام کی زیارت کر کے ہاتھ کو بوسا دو، مگر اب نماز شروع ہو چکی ہے، وہ بھی نماز جنازہ، یہ حدیث تو آپ کو یاد ہے کہ 5 موقع ایسے ہیں جہاں بات چیت کرنے والے کی 70 سال کی عبادت ویسٹ ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک یہ تشییع جنازہ یا جنازہ، خاموش، نماز تو کمپلیٹ کرنا، نماز ختم ہوتے ہی کیا ہوتا، لوگ جنازے کو کندھا دینے کے لیے چلتے، ان کا دل اب نہ لگے اگرچہ ان کے دوست کی کا جنازہ، مگر امام کے ہوتے ہوئے اپنے دوست کا جنازہ توجہ بھی نہیں ہے، دوڑے امام کی طرف، اور امام بڑی تیزی سے واپس جا رہے ہیں، مولا 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 صرف اتنا بتا دیجئے کہ آخر آپ اس نماز جنازہ میں کیوں آئے، کہا یہ خود بتائے گا، یہ کہہ کے چلے گا، یہ خود بتائے گا، وہ تو مر چکا، وہ کیسے بتائے گا، اب ذرا گھبرا گئے، کیونکہ مرنے والے سے تو کوئی بات ایسے ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ ہم خود مر جائیں، تو پھر جا کے اس کی ملاقات ہوگی ہماری برزخ کے وادی السلام، کیا مطلب اس کا، شب جمعہ سوئے، شب جمعہ مرنے والوں کی روحیں اللہ کی اجازت سے گھروں میں آتی ہیں، خواب میں آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، بہت سارا، بہت لمبا موضوع، بلکہ یہ کہیے کہ میرا اصل موضوع تو وہی ہے، یہ ساری باتیں تو بس میں آپ کو اور اپنے آپ کو ذرا سا مطمئن کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں قبر والا باپو تو اس لیے تو نہیں کہلاتا تھا نا کہ زمانے کے حالات پڑھ رہا ہوں، میں تو قبر کے حالات پڑھتا تھا، تو اب اصل موضوع میرا وہی ہے، یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ جب اصل موضوع کسی کا آ جائے تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے، میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، شب جمعہ ان کے یہی دوست خواب میں آ گئے، عالم مجتہد کے قریب قریب، انہوں نے گھبرا کے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں پتا چلا کہ آخر تمہارے جنازے میں زمانے کا امام کیوں آیا، کہا کہ مجھے پتا چلا، بلکہ خود امام نے مجھے آرڈر دیا کہ میں تمہیں جا کے تمہارے سوال کا جواب دوں، اور وہ یہ ہے کہ باقی عبادتیں تو ہر آدمی کرتا، नमाजें हैं, रोजे हैं, दुआए कुमैल है, हज है, जियारत है, चैरिटी है, वालिदैन की खिदमत है, और 300 साल पहले तो गुनाह करना मुश्किल भी बहुत था। न गाना सुनना इतना आसान था, न शराब पीना इतना आसान था, न एडल्ट्री इतनी आसान थी। 300 साल पहले माहौल ही कुछ और था। तो कौन सा ऐसा स्पेशल नेकी का काम है कहा कि दो? फिर मैं अर्ज कर दूं, ये वाजिबात नहीं बताए जा रहे हैं, ये चीजें वाजिब नहीं है आप पर, ये वॉलेंटियरी है। सवाब लेना है तो ये अमल है, नहीं लेना सवाब मत करो ये अमल, लेकिन गुनाह नहीं मिलेगा, सवाब और बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। क्या बात है? कह दो बातें। पहली बात तो ये कि हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहा करते हैं, और 300 साल पहले तो बहुत ज्यादा सिस्टम था। मेरे भाई की शादी हुई, मेरी भाभी घर में आई, 40 साल में इस घर में उसके साथ रहा, फिर ये मर गए। 40 साल में एक मर्तबा भी ना मैंने अपनी भाभी के चेहरे पे निगाह डाली, ना उससे कोई बात की। वाजिब है क्या? क्या आज की लड़की ये कर सकती है? क्या आज का लड़का ये कर सकता है? मसला ये नहीं है, वाजिबात की बात नहीं, मसला ये है कि इंसान रूहानियत का स्टेटस बहरहाल हाई इन्हीं चीजों से होता। कम खाओ, कम सो, कम बोलो, वाजिब है क्या? वाजिब नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे अमल करेंगे तो खुद ब खुद स्पिरिचुअल पावर आदमी की बहुत ज्यादा होती है। कहा 40 साल चूंकि वो मेरे लिए नामहरम और एक ही घर में रह रहे हैं 40 साल, मुझे दो दिन पहले शबे जुमा की मजलिस में शैतान का बिजनेस सीक्रेट आया था। अब इसका मतलब ये वाकई का ये कि आज के जमाने के रिक्वायरमेंट कुछ और है। आज अगर ये ना हो सके तो एटलीस्ट इतनी एहतियात तो हो कि इंटरनेट और फेसबुक और ट्विटर और सोशल नेटवर्किंग में जिस तरीके से आजकल नामहरम मर्द और औरतें एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाते हैं मुख्तलिफ डिस्कशन में, कम अज कम वो भी ना करें। ऐसा तो नहीं है ना कि यह वो एक्सट्रीम है या वो एक्सट्रीम है। क्या हम वो नहीं कर सकते कि 40 साल अपनी भावच से बात न करें जो घर में हमारे साथ रह रही है, इसलिए अब दुनिया भर की औरतों से फेसबुक के नाम पे दुनिया भर की बातें की जाए? बीच में भी तो कुछ रुकना है ना। खैर, अब इमाम फरमाते हैं ये बताएगा, और वो आलिम बता रहे हैं कि दो बात। दूसरी बात, और मेरे हिसाब से पहली बात फिर भी इजी है, दूसरी बात ज्यादा मुश्किल। 40 साल घर में साथ रहने वाली भाभी ना चेहरे पे निगाह डाली, ना कोई बात की, ये फिर भी आसान है। कहा जब से मैंने होश संभाला है आज तक, यानी मरते दम तक, अब ये तो 40 साल भी नहीं रहे, ये तो अगर इनकी 73 की एज है तो गोया 65 साल। कहा कि सारी जिंदगी जब से मैंने वो संभाला मरते दम तक, न किसी की गीबत की है न किसी की गीबत सुनी। ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, ना महरम को ना देखना फिर भी आसान है, मगर ना गीबत की है ना गीबत सुनी। और बाकी बेनिफिट छोड़ें, यही बेनिफिट कितना बड़ा है कि जमाने का इमाम ऐसे आदमी के जनाजे पे आके उसकी नमाज जनाजा पढ़ता। ये देखिए, गीबत कोई ऐसा गुनाह कि मैं कोई बहुत नई बात बता रहा हूं, किसी की मालूमात में इजाफा कर रहा हूं, अरे बच्चे तक को भी पता है कि कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन सवाल यह है कि हर एक को पता है तो लोग गुनाह से बच क्यों नहीं रहे हैं? मस्जिदों में नामहरम को नहीं देखते हम लोग, औरतें वहां, आप यहां पर, इमामबाड़ों में नामहरमों को नहीं देखते हम लोग। मैंने कहा ना कि ये पहली बात फिर भी आसान है। जब से ईरान और इराक के अंदर निजाम उलमा के हाथ में आया है जरी की जियारत में, आप अलग हैं औरतें अलग हैं। वरना ये आप मजमा जानता कि पहले मशहद के अंदर भी मर्द औरतें साथ जरी का तवाफ करते थे, करबला में भी, नजफ में भी अलग, मदीने के अंदर अलग, अब मक्के में एक मजबूरी चल रही है। मक्का इंशाल्लाह मेरी कल की यानी मंडे की तकरीर का एक उनवान। लेकिन गीबत मस्जिदों में भी होती है, मेन हॉल में होती है, दूसरी और तीसरी सफ में होती है, शायद पहली में भी होती हो, इमामबाड़ों में गीबत होती है, करबला के रोजे के सहन में गीबत होती है, जरी के तवाब के दरमियान मैंने अपने कानों से गीबत सुनी। पहले गुना से ज्यादा ये बड़ा गुना और ज्यादा मुश्किल है। अभी कम अज कम अभी तक जो माहौल है इसके अंदर, रिलीजियस गैदरिंग में ऐलान होता है लेडीज और जेंट्स सेपरेट होंगे, मगर गइबत तो हमारी रिलीजियस गैदरिंग तक का भी पार्ट बन गई, इतना बड़ा गुनाह। मगर बात यह नहीं थी, बात यह हो रही थी दुआ, खाली गुनाह करने वाले की नहीं सारे मजमे की दुआ, वो रुक जाती। और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान वो, गइबत का सबसे बड़ा नुकसान वो कि मौजूदा जमाने में जिसको आखिरी जमाना कहा जाता, आखिरी जमाने में जो सबसे बड़ा शैतान का हथियार होगा, या आखिरी जमाने में शैतान मोमिनों की सोसाइटी को किस तरह स्पॉइल करेगा, शराब के जरिए नहीं, गाने के जरिए नहीं, एडल्ट्री के गुनाह के जरिए नहीं, कत्ल के जरिए नहीं, सबसे ज्यादा जिस तरीके से शैतान तबाह करेगा वो है फैमिली लाइफ को तोड़कर, और गीबत का इसमें बहुत अहम हिस्सा, फितना और फसाद। और यहां पे रुक के एक बात ऐसी कह दूं कि आज ये बात शुरू होगी, मसल ये बात तो आज कंप्लीट होगी, इसका कंक्लूजन और इसका मेरे टॉपिक से क्या ताल्लुक है ये चीज कल आएगी। अब इतने दिनों के बाद तो आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि बहुत सारी बातें मैं उसी मजलिस में कंप्लीट नहीं कर पाता हूं, पाकिस्तान में कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि वहां मुझे 3 घंटे दिए जाते हैं कि 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी 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 इसी अप्रैल में आज जाके शारजा के मेरी तकरीर सुन लीजिए 3 घंटे। तो अब देखिए टाइम मैनेजमेंट का मैं भी कायल हूं, और जो चीज है उसूल अपनी जगह सही, जो लोगों के प्रैक्टिकल मजबूरियां और परेशानियां उसके एतबार से बात है, मैं भी इसका ख्याल कर रहा हूं, यहां के एतबार से घंटा भी बहुत ज्यादा आप बैठ जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए मेरी कोई बात इनकम्प्लीट रहे तो अगले दिन कंप्लीट होगी। अब आइए दुआ और आखिरी जमाने को मिला रहा हूं, पहले ये वाकया सुनी, दो हिस्ट्री के दो अलग अलग वाकयात, दोनों का ताल्लुक इमाम मासूम से, ठीक है दो अलग इमाम है, लेकिन इमामत में जाहिरी तौर पे चेहरे अलग होंगे, असल तो सबकी एक है, अव्वलोना औसतोना आखिरोना कुल्लोना मोहम्मद सगीरोना कबीरोना सिवा छोटे बड़े सब इस खानदान के एक है। दो वाकयात, पहला बहुत मशहूर है और वहां से मेरा वो वाला वादा आगे चलेगा कि चौथे इमाम के हालात बहुत मशहूर है, खाली इशारा करूंगा आप समझ जाएंगे कि कौन सा वाकया बता रहा हूं। हशाम इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान इब्ने हकम, बहुत मशहूर जालिम बादशाह, हज के लिए गया, हाजी लोग तो खास तौर पे मेरी बात समझेंगे, हज के लिए गया, हर एक को तमन्ना होती है हजरे अस्वद को बोसा दिया जाए, दुश्मनों का एक तरीका होता है, पहले वो खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सुनिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जब उस प्रॉब्लम की वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं तो फिर एक डिस्ट्रक्शन वाला सोल्यूशन लेके आते हैं। नॉर्मल हालात में कोई उनका वो डिस्ट्रक्टिव सोल्यूशन नहीं सुनेगा, लेकिन जब परेशान हो गए, जैसे दो बातें लोग कहते हैं, अभी मैं कनाडा में गया था तो कोर्ट में केस भी चल रहा था, दो बातें, ये बातों की जिम्मेदारी मेरी नहीं, कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो एंटीवायरस प्रोग्राम बनाती हैं, पहले वो कंप्यूटर के वायरस पैदा करती हैं, वो वायरस फैलाती और जब उसकी वजह से हर आदमी परेशान होता, फाइल्स करप्ट हो रही, पासवर्ड जो है वो दूसरों तक पहुंच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड महफूज नहीं हो रहा, तो वो सामने लाते हैं कि ये हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम इस्तेमाल कीजिए आपका कंप्यूटर बिल्कुल सेफ होगा, खुशी से लोग खरीदते, लेकिन प्रॉब्लम भी उसी ने क्रिएट किया। आम हालत में लेके आए कि 80 पाउंड का प्रोग्राम खरीदिए, हर आदमी कहेगा हमारे पास फालतू पैसे नहीं, हम तो 8 पाउंड ना दे 80 कहां से दे, जमात के लवाजिम हम नहीं देते हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट होती रहती है, तुम कौन से आ गए, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसी तरह से एक और बात कही जाती है, वल्लाह आलम, बहुत सारी दवाइयों की कंपनियां पहले बीमारियां किसी इलाके में फैलाती हैं, और जब बीमारी फैल जाती है कहते ये है देखिए हमारे पास इसका सोल्यूशन, ये हमारी दवा इस्तेमाल कीजिए बीमारी खत्म हो जाएगी, पहले वायरस फैलाएंगे फिर वैक्सीन लेकर आएंगे, और ये सारी चीजों के लिए तो आपको पता है ना हम बेचारे थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज जो है ना वो बेहतरीन निशाना होती, वही तरीका कार जो है वो शैतान का है, बल्कि असल में शैतान का तरीका कार है जो इन लोगों ने भी इख्तियार किया, अगर ये दोनों बातें सही। और वो आजकल हज में भी हो रहा, पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं खुद और फिर उसका सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। वो सोल्यूशन क्या, वो मसलन हजरे अस्वद के लिए सोल्यूशन क्या आया, यही तो आया है ना कि हजरे अस्वद की वजह से क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता, आराम आराम से लोग तवाफ कर रहे हैं, आराम आराम से लोग। आज मेरा टॉपिक हज नहीं है, वो कल, ये तो एक बहुत ही वाजे मिसाल जो हज पर नहीं गया वो भी समझ रहा, कहा लोग बहुत आराम से तवाफ कर रहे हैं, हजरे अस्वद के करीब आया खुद ब खुद वही क्राउड है, लेकिन एक ऐसा मजमे का प्रेशर बिल्ड होने लगा कि जान खतरे में पड़ जाती। अगर हजरे अस्वद यहां से हम हटा दें तो फिर कौन आदमी यहां पे रुकेगा, पूछ लीजिए पुराने हाजियों से। पहले हजरे अस्वद को मेंशन करने के लिए जमीन पे एक लाइन ड्रॉ की गई थी, उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम होता था कि जैसे ही वो लाइन करीब आती थी सारा मजमा रुकने लगता था। अब पीछे से क्राउड आ रहा है, आगे का क्राउड वहां पे रुका है, यहां रुककर अल्लाह अकबर कह के आगे बढ़ना, जान खतरे में थी, उन्होंने वो लकीर वहां से मिटा दी, रिमूव कर दी। कहा अब हजरे अस्वद, ये नया सजेशन है इस वक्त कि हजरे अस्वद को हटा दो। इस्लाम में कोई वाजिब को थोड़ी है कि खाने काबा में हजरे अस्वद लगा रहे। देखिए ये सोल्यूशन, पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया, आज एक पूरी साइंस है क्राउड मैनेजमेंट, किस तरह से क्राउड को मैनेज किया जाता। तो हजरे अस्वद पे इतना रश होता, आज उससे फायदा उठा रहे। इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो बहुत अहम बातें मैं कल बयान करूंगा, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वो क्राउड आएगा जो खाली मुझे सुनना चाहता। अभी आजकल वीकेंड में तो जो लोग छुट्टी है तो वो जरा सवाब के लिए भी आके बैठ जाते हैं, मैं क्यों उनको परेशान करूं। तो अब हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान इब्ने हकम, छोड़िए इतना लंबा नाम, इतना तो हमेशा अपने वालिदैन का भी शजरा याद ना हो जो मैं सुना रहा हूं। हिशाम हज के लिए आया हजरे अस्वद को बोसा देना, अब इतना रश है हजरे अस्वद पर, तीन बार उसने कोशिश की मैं करीब जाके बोसा दूं, अब पब्लिक प्रेशर ने उसको उठा के पीछे कर दिया। चुनाचे वो आखिर में जाके बिल्कुल एंड में खड़ा हो गया, देख रहा है क्राउड को कैसे रोका जाए। इतने में उसने देखा कि कोई आया, वो जानता है पहचानता है, कभी इस तरह से अपने आप को इनोसेंट और इग्नोरेंट बना के जाहिर करना होता। देखा वो आया, सारा मजमा हट गए, खुद ब खुद एक रास्ता बना आने वाला, बड़े इत्मीनान से हजरे अस्वद तक गया, हजरे अस्वद को बोसा दे के पीछे हटा। उसने चारों तरफ देखा, कहा ये कौन आदमी, खूब जानता है कौन आदमी है, लेकिन एक तरह से इमाम को डिग्रेड करने के लिए। फरसदक करीब खड़े थे, बस एक बार जलाल में आ गए और वह कसीदा पड़ा चौथे इमाम के बारे में, तू नहीं जानता, ये वो है जिसे मक्का पहचान रहा है, जिसे बथा पहचान रहा है, जिसे हजरे अस्वद पहचान रहा। पता चला ये चौथे इमाम। ठीक, हिशाम कौन है, बनू उमय्या का बादशाह यानी यजीद का सक्सेसर। अब एक वाकया हिस्ट्री में, दूसरा वाकया सुनिए और घड़ी, मैं आपसे ज्यादा मैं घड़ी देख रहा हूं, दूसरा वाकया सुनिए। रावी सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु व सलाम के साथ, यह है हमारी कौम का इस वक्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जहां दुआ की बहुत सख्त जरूरत। यहां से हमारा टॉपिक शुरू होगा, यानी टॉपिक तो चल रहा है लेकिन जरा सा सीक्वेंस में आ जाएगा टॉपिक। रावी इमाम के साथ गया हज पर, देखा इमाम ने पूरा तवाफ कर लिया, यानी सेवन राउंड सेवन सर्किट पूरा तवाफ किया इमाम ने, और मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ के इमाम सफा मरवा की तरफ चले गए। रावी ने हैरान होकर कहा, फरजंदे रसूल, आपने हजरे अस्वद को बोसा नहीं दिया, हजरे अस्वद की तरफ आप गए भी नहीं, जबकि आपके सारे बुजुर्ग अपने हर तवाफ में हजरे अस्वद को बोसा देते थे। अल्लाह के रसूल का तवाफ हमारे पास किताबों में पूरी डिटेल के साथ, कहां से शुरू किया, कहां रुके, कहां बोसा दिया, कहां अपना सीना और पेट दीवारे काबा से मिलाया, और उस मौके पे क्या दुआ पड़ी, पूरा मौला मासूमीन चौथे इमाम, मौला आप नहीं गए। अब छठे इमाम का जवाब सुनिए, वो चौथे इमाम, ये छठे इमाम, कितना फर्क है दोनों के दरमियान, कितना डिस्टेंस है टाइम के एतबार से, हाजली 50 साल, 95 हिजरा में फोर्थ इमाम की शहादत, 148 हिजरा में सिक्स इमाम की शहादत। तो हार्डली 50 साल का फर्क है, लेकिन 50 साल में कितना बड़ा चेंज आया। छठे इमाम कहते हैं कि सुनो, हमारे बुजुर्ग जब तवाब के लिए आते थे तो मजमा उनको पहचानता था, उनको जानता था, उनके स्टेटस को मारिफत रखता था, वो उनके लिए खुद ही रास्ता देता था, वो जाके बूसा दे के आ जाते थे। आज लोग हमें नहीं जानते, आज लोग हमें नहीं पहचानते, आज लोग हमारी मारिफत नहीं करते। आज अगर हम हजरे असवद को बूसा देने जाएं तो मजमे को पुश करना पड़ेगा, मुसलमानों को अजियत देना पड़ेगी। हर एक को पता है कि हजरे असवद के करीब आप जाए तो दो आदमियों को इधर हटाएंगे, किसी को कोहनी मारेंगे, किसी की कोहनी खाएंगे, कोई आपके ऊपर चढ़ेगा, किसी पे आप चढ़ेंगे, फिर हजरे असवद तक पहुंचते। इमाम ने कहा कितना ही नरमी के साथ कोई आगे बढ़े, बहरहाल दूसरे लोगों को धक्का तो लगेगा। मैं नहीं चाहता कि एक सुन्नत काम की खातिर हराम से मिलता जुलता काम मुझसे हो जाए। हजरे असवद को बोसा देना मैक्सिमम 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 सुन्नत है, वाजिब तो नहीं, और मुसलमान को अजियत देना हराम है। इमाम ने कहा अच्छा, ये तो वो हदीस है जो आजकल हम अपने हर काफिले को वहां पे सुनाते हैं कि हजरे असवद से ज्यादा अहम है तबाह करने वाले मुसलमानों का ख्याल रखना, और ये बहुत अहम मैसेज है जो हर ग्रुप वाला अपने साथियों को देता। मगर मेरा सवाल इस वक्त इसके बारे में नहीं है कि तवाब का तरीका क्या है और हजरे असवद क्या है, ये बातें कुछ टेक्निकल फिक्री मसाइल कर आएंगे, आज नहीं। लेकिन आज ये कहना 50 साल पहले चौथे इमाम तक, चले छोड़े रसूल खुदा के जमाने, मौला के जमाने को भी छोड़े, 50 साल पहले चौथे इमाम के जमाने तक, बनू उमैया के दौर में, यजीद के जानशीन के दौर में, लोग चौथे इमाम को इतना जानते हैं, इतना पहचानते हैं, इतनी मारिफत रखते हैं कि उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, और 50 साल बाद छठे इमाम, हमें पता है ना शियत को छठे इमाम ने किस तरह से प्रोटेक्ट करके हम तक पहुंचाया कि आज हमारा दूसरा नाम ही जाफरी है, हम शिया हैं, हम जाफरी हैं, लेकिन लोग इतना इमाम से दूर हो गए, गाफिल हो गए, पता भी ना चला कि ये कौन है। ये इतना जो फर्क आया, ये कैसे आया, जुमला सुनिए। और बस जो मैं दो दिन तीन दिन से अलग अलग बातें कह रहा था, अब इनको जमा करके एक सीक्वेंस की का वक्त आ गया। सऊदी अरब का मुफ्ती आजम हमारे खिलाफ फतवा देगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जामियतुल अजहर से अगर हमारे अगेंस्ट फतवा आ जाए, हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। पाकिस्तान के दारुल उलूम से और हिंदुस्तान के दारुल उलूम दियोबंद से हमको कत्ल करने का फतवा आ जाए, हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारे मेंबर पे अगर कोई लैक ऑफ नॉलेज वाला स्पीकर आके दो जुमले ऐसे कह दे, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वो देखिए, वो सुनी। बस अब मसाइब का वक्त आज फिर कम रह गया, बस बहुत जल्दी मुझे बात खत्म करना है, और वो ये चौथे इमाम तक, इमाम अली से लेके चौथे इमाम तक, सारा खाने काबा का कंट्रोल दुश्मनों के हाथ में था, बनू उमैया और बनू उमैया से पहले वाले, जिनको ज़ियारत आशूरा में कहा गया अल मुमहिदीन अलोम, बनू उमैया को ताकतवर बनाने वाले, उनके हाथ में था। वो गैर थे, वो मुखालिफ थे, वो दुश्मन थे, वो खून के प्यासे थे, वो फजाइल इमाम के मुनकिर थे। उस वक्त लोग इमाम को ज्यादा पहचानते थे, और छठे इमाम के जमाने में हुकूमत आ गई बनू अब्बास की। बनू अब्बास अपने आप को पहले मरहले में शिया कहते थे, अपने आप को खानदान अहले बैत वाला कहते थे, इमाम के बारे में कहते थे वी आर कजन, रसूल के चचा अबू तालिब की औलाद में ये है, दूसरे चचा अब्बास की औलाद में ये हमारे फैमिली वाले हैं, ये आले मोहम्मद हैं, हम भी आले मोहम्मद हैं। वो अपने बन के आए, वो दोस्त बन के आए, वो फैमिली मेंबर बन के आए, वो अपने आप को एक ही खानदान वाला कहते हुए आए। उन्होंने इतना नुकसान पहुंचा दिया कि अभी उनकी हुकूमत को 10 साल गुजरे हैं और लोग छठे इमाम को भूल गए। मुखालिफ दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचाता, अपना बन के जो आए वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता। अब इसे दो लफ्जों से सुन समझ लीजिए और मसाइल, पहले मासूम और आखिरी मासूम, पहला मासूम और आखिरी मासूम। पहले मासूम का जमाना अल्लाह का रसूल, काफिर ज्यादा नुकसान दे कि मुनाफिक ज्यादा नुकसान दे, हर एक कहेगा मुनाफिक, क्यों? काफिर दुश्मन बन के आता है ओपन एनिमी, मुनाफिक दोस्त बन के आता है हमारे दरमियान अमंग अवर सेल्स। चौथे इमाम के जमाने में दुश्मन हुकूमत कर रहा, छठे इमाम के जमाने में अपने आप को अहले बैत करार देने वाला हुकूमत कर रहा। ये पहले इमाम के जमाने में पहला मासूम इमाम नहीं, मासूम काफिर और मुनाफिक। आखिरी इमाम के जमाने में आखिरी मासूम, एक सुफियानी आएगा, एक दज्जाल आएगा। सुफियानी खुला दुश्मन होगा, दज्जाल हमारे दरमियान होगा। सुफियानी दुश्मन बन के आएगा, दज्जाल दोस्त बन के आएगा। भाई जो आपके लिए रोजी लेके आए, रोटी लेके आए, फाके के आलम में आपको खाना दे रहा हो तो दोस्त होता है ना। सुफियानी का नुकसान ज्यादा है कि दज्जाल का ज्यादा? कहा कि दज्जाल का ज्यादा। तो ये जो पहला मासूम और आखिरी मासूम, पूरे 14 मासूमीन की सीरत को मैंने दो जुमलों में खुलासा करने की कोशिश की। दोनों का पैगाम ये है, फिर छठे और आठवें चौथे इमाम का तो प्रैक्टिकल वाकया। गैर का मुकाबला करना आसान है, सऊदी अरब के मुफ्ती आजम के फतवे का मुकाबला करना आसान है। हमारे दरमियान जहां से कोई जाहिलियत की बात फैलाई जाए, इससे अपने आप को बचाना मुश्किल है। और ये वो मंजिल है कि जहां सिर्फ एक चीज इंसान के काम आ सकती है, और वो ये है कि पब्लिक को नॉलेज प्लस अवेयरनेस दी जाए। नॉलेज भी बेकार है अगर अवेयरनेस नहीं, और अवेयरनेस तो आ ही नहीं सकती जब तक कि नॉलेज ना हो। ये दो चीज, और ये मेरे मजलूम आका सज्जाद के उस खुतबे का एक बहुत बड़ा मकसद था। उस खुतबे का एक बहुत बड़ा मकसद था जो शाम की मस्जिद में जुमे के दिन दिया गया। मेरे मजलूम आका के बहुत सारे खुतबात हैं इस पूरे जिहाद में। मेरी मजलूमा और शिबह मासूमा शहजादी ज़ैनब कुबरा के बहुत सारे खुतबात हैं इस पूरे जिहाद, लेकिन एक खुतबा मेरे मजलूम आका सज्जाद का इस एतबार से बहुत है। नॉलेज प्लस अवेयरनेस, यही सोल्यूशन है वक्त के यजीदों का मुकाबला करने का। जुमे का दिन, नमाज जुमा का क्राउड हमेशा ज्यादा होता है, पूरी मस्जिद भरी हुई। यजीद को अपनी पावर शो करना, सिपाहियों से कहता है कि कैद खाने से कैदी को लेके आओ, अल्लाह उन जालिमों को बहुत जल्द नीस्तो नाबूद कर देगा जो शाम की और सीरिया की जियारतों में रुकावट बन गए। कितना फासला है मस्जिद में और उस कैद खाने में जहां चौथे इमाम कैद थे। वो जनाब रुकैया वाला कैद खाना नहीं बता रहा हूं, जो मस्जिद के अंदर प्रेमिसिस के अंदर है, वहां से लाया गया। और देखिए यजीद कितना उसको कॉन्फिडेंस है या ट्रस्ट है अपने साथियों पर, यानी अपने साथियों से मतलब वो जो मस्जिद में नमाजी आए, कि चौथे इमाम को लेके आ रहा है, गले का तौक भी नहीं खोल रहा, हाथ की हथकड़ी भी नहीं काट रहा, पांव की बेड़ी भी नहीं काट रहा है, नमाज के सफ में लाके बिठा दी। उसे पता है कि एक आदमी भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, यजीद नमाजी के तो कम अज कम हाथ और पांव खोल दो। और यजीद के खुद खतीब ने, जो यजीद का अपना ऑफिशियल ऑरेटर है, मिंबर पे जाके जो गलत सलत कहना था कहा। मेरे मजलूम आका ने सब कुछ सुना, जहां जहां ऑब्जेक्शन करना था ऑब्जेक्शन भी किया, उसके बाद खड़े हुए। आसान नहीं था खड़ा होना, अपना खड़ा होना ना समझिए कि आपने जमीन पे हाथ रखकर खड़े हो गए। ये वो है जिसके हाथों में इतनी वजनी हथकड़ियां, ये वो है जिसके पांव में इतनी वजनी बेड़ियां, ये वो है जिसके गले में तौके खारदार। किस तरह से मेरा मजलूम इमाम खड़ा हुआ और मजमे को देख के कहा, यजीद तेरे आदमी को जो कहना था कह दिया, मुझे इजाजत है मैं भी कुछ कहूं। इमाम मोहताज नहीं है कि यजीद परमिशन दे तो कहेंगे। मकसद था मजमे को इन्वॉल्व करना, बस जब ये इमाम ने कहा तो यजीद के रिप्लाई से पहले मजमा कह उठा, हाँ यजीद हम भी सुनना चाहते हैं, आदमी क्या कहेगा। ये चाहते थे इमाम, इतनी अवेयरनेस आ जाए कि मजमा खुद कहे कि हम इमाम को सुनना चाहते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही मजमे ने कहा, चौथा इमाम मिंबर पे गया, मिंबर पे गया, फिर भी यजीद की जानिब नहीं देखा कि वो यस कहता है कि नो। यजीद के बाप का मिंबर कोई थोड़ी है कि उससे पूछा जाएगा। मजमे को अवेयर करके इमाम गया और क्या खुतबा दिया। बस सिर्फ दो जुमले मुझे कहना है, इससे ज्यादा आज वक्त नहीं। लेकिन पहले खुद भी कहे एक हिस्सा, जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। अनबन मोहम्मद अनिल मुस्तफा, अनबन अली अनिल मुर्तवा, अनबन खदीजत अल कुबरा, अनबन बिन्त नबीये, अनबन मक्का व जमजम व सफा व मरवा। मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तजा का दिलबंद हूँ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ, मैं मक्के का मालिक हूँ, मैं जमजम और सफा और मरवा का वारिस हूँ, और मैं उसका बेटा हूँ जिसका सर पर बस एक गर्दन से जुदा किया गया, जिसके अहले बैत को कैदी बना के बाजारों और दरबारों में घुमाया गया। एक बार दरबार में कोहराम बपा हुआ, यजीद घबरा गया, एक जुमला वो कहा जो इससे पहले करबला के मैदान में हरमुला से उमर साद ने कहा था। घबरा के यजीद कहता, ऐ मौज़िन इक़्ता कलामहु, इसके कलाम को काट दे। अजान शुरू हुई, मौला सज्जाद ने खुतबा रोका, बस मेरे आखिरी दो जुमले। पहला जुमला आपसे है, दूसरा जुमला आका सज्जाद से है। आपसे यह है कि आपने सुन लिया, बहुत आराम से सुन लिया, लेकिन जरा हम जैसों से भी पूछिए। हम तो स्टूडेंट, जब मिंबर पे खतीब जाता तो उसे गर्दन की आजादी चाहिए, हाथों की आजादी चाहिए, पैरों की आजादी चाहिए, क्योंकि कभी चेहरा घुमाना पड़ता है, हाथों से इशारा करना पड़ता है। लेकिन हमारी जाने निसार शाम की मस्जिद के उस खतीब पर, जो मिंबर पर भी है मगर इस हालत में कि गले में तौक है, चेहरा घुमा नहीं सकता, हाथों में हथकड़ी है, हाथों से इशारा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी कैसा खुतबा दी। और एक जुमला आका सज्जाद से, मौला मैं आपके मसाइब को कम नहीं कर रहा, मौला आपके मसाइब सबसे ज्यादा, मगर सिर्फ एक जुमला इस वक्त कहना है। मौला आपका कलाम काटने की जरूरत पड़ी तो यजीद ने अजान इस्तेमाल की, लेकिन जब आपका बाबा मैदान करबला में अली असगर को लेके आया तो उमर साद ने कहा, हरमुला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन का कलाम काट, वहां कोई अजान ना थी। तीन भाल का तीर चला, तीन भाल का तीर किसे कहते हैं, जिसका वजन असगर के वजन से ज्यादा है, जो घोड़े की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह असगर के गले में लगा कि एक सिरे से दूसरा सिरा, असगर का कलेजा छिद गया। हुसैन ने तीर निकालना चाहा, असगर तड़प उठा। एक बार हुसैन ने कहा, असगर मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मगर शेरे खुदा का पोता है, हुसैन का बेटा है, अब्बास झरी का भतीजा है, मैं तीर निकालता हूँ, तड़पना नहीं। तीर तो निकाला मगर बच्चे का दम भी निकल गया, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। आका ने ये खून अपने हाथ में लेके आसमान पर फेंकना चाहा, आसमान कांप उठा। मौला ये खून नाहक ना आए, कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन नरज उठी। आका ये खून नाहक ना आने पाए, कयामत तक सब्जा पैदा ना होगा। हुसैन के हाथ में खून है, चेहरे पे मला, दाढ़ी को खून से रंगा, नाना रसूल खुदा के सामने जाऊंगा, नाना आपकी उम्मत ने मेरे असगर के साथ ये किया, इंकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। खुदावंदा ये मेरा अकीदा भी है, तजर्बा भी है और मुशाहिदा भी, कि जहां मसाइब अली असगर बयान होते हैं, असगर की दादी फातिमा जरूर तशरीफ लाती। खुदावंदा तुझे असगर के खून नाहक का वास्ता, मेरे मजलूम आका सैयदुस्साजिदीन के इस इम्तिहान का वास्ता, जो लोग आज की मजलिस में गिरिया कर रहे हैं उनके गिरिए का वास्ता, इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, इनके रिस्क के जराए को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, दुनिया भर के शियान हैदर कर्रार की मदद फरमा, जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा, हमारे तमाम मरहूमिन की मगफिरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, साहिबान ईमान को रोजी की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा हम सबको इस माहौल में खुद और अपनी औलाद को इस्लाम पे अमल कराने की तौफीक अता फरमा, जुहूर इमाम में ताजील फरमा।